नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं। नाम है प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया। ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने लिखी थी लगभग 1988 से 90 के बीच, और ये उनकी क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का हिस्सा है।
जी हाँ, और पूज्य गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा था कि उनका भौतिक शरीर शायद ना रहे, पर उनका ज्ञान शरीर, मतलब उनके विचार, उनका ज्ञान, वो इस साहित्य के रूप में हमेशा रहेगा।
हाँ, और इसे लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा था।
बिल्कुल।
इस पुस्तक का जो केंद्रीय विषय है वो है युग संधि। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका क्या मतलब है, जरा सरल शब्दों में समझाएंगे?
हाँ जरूर। देखिए, युग संधि, इसका सीधा सा मतलब है एक बड़े बदलाव का समय, जैसे दो युग मिल रहे हों। पूज्य गुरुदेव ने इसे विचारों और कर्मों में एक बहुत बड़े परिवर्तन की वेला कहा।
अच्छा,
आप ऐसे सोचिए, जैसे बारिश होती है तो सूखी धरती में जो बीज दबे आते हैं वो अचानक अंकुरित हो जाते हैं।
हाँ,
तो ये कुछ वैसा ही समय है जब समाज में जो गलत सोच फैली हुई है, जो विकृतियां हैं, वो ठीक हो सकती हैं और उनकी जगह एक नई अच्छी सकारात्मक सोच ले सकती है। पूज्य गुरुदेव ने 21वीं सदी को इसी बदलाव के एक निर्णायक अवसर की तरह देखा था।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है। पुस्तक ये भी कहती है कि समाज में जो इतनी समस्याएं दिखती हैं उसका कारण ज्यादातर हम लोगों की सोच और कर्म ही हैं।
बिल्कुल सही, हमारी अपनी सोच, हमारे अपने काम।
लेकिन इसमें एक आशा भी है। पूज्य गुरुदेव मानते थे कि अगर यही बहुमत, यही ज्यादातर लोग अगर सही दिशा में मुड़ जाएं, तो हालात पूरी तरह बदल सकते हैं।
हाँ बिल्कुल।
यहाँ पर वो संघ शक्ति यानी कि सामूहिक प्रयास की ताकत पर बहुत बल दिया गया है।
जी, ये आजकल जिसे कलेक्टिव एक्शन कहते हैं, कुछ वैसा ही है, पर इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है और इसी सामूहिक प्रयास को दिशा देने के लिए एक योजना की बात पुस्तक में है, युग संधि महापुरुषरण।
युग संधि महापुरुषरण, ये क्या था?
ये कोई मामूली योजना नहीं थी, इसे महाकाल का संकल्प बताया गया, मतलब समय की जो सबसे बड़ी शक्ति है उसका संकल्प, और शांति कुंज इसका एक माध्यम बना।
अच्छा,
लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था उस समय के हिसाब से सन 2000 तक करीब 2 करोड़ लोगों को एक खास भावना से जोड़ना, जिसे यज्ञ भावना कहा गया।
यज्ञ भावना,
हाँ, मतलब त्याग और सेवा की भावना से। ये सिर्फ गिनती बढ़ाने की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा तैयार करनी थी जो युग परिवर्तन के लिए सही माहौल बना सके।
तो ये तो एक बहुत बड़ी सामूहिक योजना हुई, पर इसमें एक आम आदमी, एक सामान्य नागरिक, वो कहाँ आता है? हम अक्सर सोचते हैं ना कि इतने बड़े बदलाव में मैं अकेला क्या कर सकता हूँ।
बिल्कुल, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य गुरुदेव शारीरिक बल या सिर्फ पूजा पाठ, बाहरी कर्म कांड, इनसे कहीं ज्यादा महत्व देते थे मनोबल को।
मनोबल, मन की शक्ति।
हाँ, मन की शक्ति। और दूसरी चीज, पात्रता।
पात्रता, इसका मतलब?
पात्रता मतलब योग्यता, लायक होना। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि ईश्वर की मदद या उनकी कृपा वो सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, व्यक्ति अपनी भीतरी योग्यता से, अपनी सच्ची लगन से उसका अधिकारी बनता है।
तो ये पात्रता असल में है क्या? इसे कोई कैसे बढ़ा सकता है?
देखिए, पुस्तक में इसे बहुत साफ बताया है। पात्रता यानी आपके अंदर का उत्साह, कुछ अच्छा करने की उमंग।
हाँ?
श्रमशीलता मतलब मेहनत करने की आदत। एकाग्रता यानी अपने लक्ष्य पर टिके रहना। और उत्कृष्टता की प्यास मतलब हमेशा और बेहतर करने की चाहत।
अच्छा,
पूज्य गुरुदेव के अनुसार ईश्वर की असली कृपा क्या है? वो सिर्फ ये नहीं कि आपकी इच्छा पूरी हो गई, असली कृपा है अच्छे आदर्शों के लिए हिम्मत से खड़े होने की ताकत मिलना, बड़े कदम उठाने की क्षमता मिलना।
समझ गया।
और पुस्तक ये भी कहती है कि ये कोई साधारण समय नहीं था, ये एक विशेष दौर था जब माना गया कि ईश्वर खुद अपने भक्तों को पुकार रहे हैं।
किस लिए?
युग धर्म निभाने के लिए, मतलब जो समय की मांग है उसे पूरा करने के लिए। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा था,
अग्रदूत माना गया है, मतलब सबसे आगे चलने वाले।
जी हाँ बिल्कुल, उनसे उम्मीद की गई थी कि वो इस बदलाव को आगे बढ़ाएंगे।
तो उनसे कुछ खास करने को भी कहा गया था?
हाँ, कुछ व्यवहारिक चीजें सुझाई गई थीं, जैसे रोज थोड़ा समय निकालना साधना के लिए, गायत्री मंत्र का जाप हो या सूर्य का ध्यान, ये मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के तरीके हैं। और सबसे जरूरी काम, जिसे ज्ञान यज्ञ कहा गया।
ज्ञान यज्ञ?
हाँ, यानी पूज्य गुरुदेव के जो विचार हैं, जो युग चेतना जगाने वाला साहित्य है, उसे पहले खुद पढ़ना, गहराई से समझना और फिर दूसरों को पढ़ने या सुनने के लिए प्रेरित करना।
ये ज्ञान यज्ञ, ये विचार तो बहुत शक्तिशाली लगता है। इसे कैसे किया जा सकता है?
इसका एक बड़ा सरल सा गणित समझाया गया है। सोचिए, अगर एक व्यक्ति रोज सिर्फ कुछ लोगों को भी ये अच्छा साहित्य पढ़कर सुनाए या पढ़ने को दे, तो ये विचार कितनी तेजी से फैल सकते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक।
हाँ, ये तो है, एक से अनेक तक।
बिल्कुल, जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है, वैसे ही एक अच्छा विचार पूरे समाज में फैल सकता है। पर यह सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं थी, इसे जीवन में उतारने पर भी जोर था।
जैसे?
जैसे फिजूल खर्ची से बचना, यानी मितव्ययता, समाज के लिए अपना थोड़ा समय देना, यानी समयदान, और जो अच्छे आदर्श हैं उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, ताकि आप खुद उस बदलाव का एक उदाहरण बन सकें।
सही बात है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया हमें ये याद दिलाती है कि हम एक असाधारण समय में हैं, एक ऐसा समय जो शायद हजारों साल में एक बार आता है, एक बड़े परिवर्तन का अवसर।
जी।
और ये परिवर्तन कैसे संभव है? सामूहिक संकल्प से, अपनी भीतरी योग्यता यानी पात्रता बढ़ाने से और दैवीय मार्गदर्शन से।
हाँ, इन तीनों के मेल से।
पूज्य गुरुदेव का संदेश एकदम साफ है, ये समय गंवाने का नहीं है, ये मौका चूकना नहीं चाहिए।
बिल्कुल, क्योंकि ऐसा अवसर शायद इस जीवन में फिर ना मिले। और ये सारी चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है।
क्या सवाल?
सवाल ये कि आज के समय में जब हमें चारों तरफ बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है, तब इस बड़े लक्ष्य में, इस नवनिर्माण के महायज्ञ में हमारी अपनी आहुति क्या हो सकती है? हम अपनी रोज की सोच में, अपनी रोज की जिंदगी में ऐसा कौन सा छोटा मगर ठोस कदम उठा सकते हैं जिससे हम भी इस बड़े परिवर्तन में अपना योगदान दे सकें?
ये सोचने वाली बात है, हमारी अपनी आहुति क्या हो सकती है।